सूरज ईशा के नमाज के बाद जब अंधेरा हो जाए तो तब वो तुलू होता है, बाहर निकलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की कसम खुद अल्लाह ने खाई है, आपकी गेसोए दराज की कसम खाई है, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली बारे मक्का आपके बारे में चर्चा करते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं कि अल्लाह ने आपको छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। दुनिया तो मशक्कत का घर है, दुनिया तकलीफों की जगह है, ईजाओं के बर्दाश्त करने का मौका है। यहाँ आपको तंगी तकलीफ रहेगी, वलल आखिरत खैरुन लका मिन अल-उला, आखिरत में हम आपको मकाम महफूज देंगे और वहाँ आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। और अर्ज किया था वाला सौफा यौती का रब्बू का फतरदा, कि अल्लाह का ये खास वादा है अपने हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम आपको इतना देंगे कि खुश कर, हम आपको इतना देंगे कि खुश कर देंगे। जब तक आप ये न कहें कि मैं खुश हो गया, उस वक्त तक हम आपको नवाजते रहेंगे, नेमतों की इनामात की जजा और बदले की बारिश करते रहेंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपको हम कैसे छोड़ दें। अब ये मक्के वाले कह रहे हैं कि हमने छोड़ दिया, तो आप खुद ही बताएं हम आपको कैसे छोड़ दें, जबकि हमने आपको यतीमी में नहीं छोड़ा। अलम यजिद का यतीम कहावा, जब आप दुनिया में यतीम पैदा हुए थे तो उस वक्त पर हमने आपको नहीं छोड़ा, तो आप कैसे छोड़ देंगे। जैसे गुज़श्ता अर्ज किया कि हज़रत हलीमा सादिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गई, दो साल तक अपने पास रखी, बरकतों की बारिश हजरत हलीमा सादिया के घर पर, खानदान पर, और आपके खेतों पर, और आपके बागात पर, या अल्लाह की तरफ से खास बारिश। बनो साद के लोग कहते थे कि अपने जानवरों को अगर भूखा नहीं रखना है तो सादिया हलीमा सादिया हलीमा सादिया के साथ अपने जानवरों को भेज दो। हलीमा सादिया के जानवर चरने जाते हैं तो वो पेट भर के वापस आते हैं, तो अगर तुम भी अपने जानवरों के साथ भेज दो तो वो भी भरे पेट वापस आएंगे। इसलिए जानवर सब के सब हजरत हलीमा सादिया के जानवरों के साथ लगा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हजरत हलीमा के घर का कोई जानवर भूखा नहीं रहता, तो अल्लाह सबको खिला देते, सबको नवाज देते। दो साल के बाद हजरत हलीमा लेके आई थी बच्चा माँ के हवाले करने के लिए, हजरत आमीना के हवाले करने के लिए, लेकिन मक्के में वबाई अमराज चल रहे थे। तो हजरत हलीमा से खुद आमीना ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा अम्मा जान ने, ये यहाँ वबाई अमराज चल रहे हैं, इसलिए बच्चे को आप वापस लेके जाएं। तो हजरत हलीमा भी ये चाहती थी कि बच्चे को वापस लेके आए, तो बच्चे को लेके आ गई। मजीद दो साल तक हजरत हलीमा ने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास रखा। बच्चा तीन साल साढ़े तीन साल का हो गया, तो हजरत हलीमा की बेटी जब अपने जानवरों को चरने के लिए चराने के लिए लेके जाती तो वो तीन साल के बच्चे को भी,
जो अभी मुश्किल से चल रहा है उस बच्चे को भी हजरत हलीमा की बेटी रसूलुल्लाह की बहन अपने साथ लेके चले जाती हैं पहाड़ों पर जी चरागाहों में। हलीमा ने कई दफा ताकीद की, मना किया कि ये छोटा बच्चा है, इस बच्चे को तुम लेके क्यों चले जाती हो। तो बेटी ने यानी बहन ने रसूलुल्लाह की बहन ने हजरत हलीमा की बेटी ने ये हजरत हलीमा से कहा कि अम्मा जान मैं अपने इस मक्की भाई को इसलिए अपने साथ लेके जाती हूँ कि ये भाई मेरे साथ रहता है तो हमारे सरों पर बादल साया किए रहता है, सख्त से सख्त धूप में भी हमें गर्मी बर्दाश्त करनी नहीं पड़ती, इस बच्चे और इस भाई की बरकत से हमारे सरों पर बादल साया किए रहता है और जहां भी हम घूमते हैं वहां ठंडक महसूस होती है। जिस दिन मैं अपने भाई को साथ लेके नहीं जाती उस दिन थोड़ी देर में परेशान हो जाती हूँ गर्मी की वजह से, धूप और तपिश की वजह से, इसलिए अपने छोटे भाई को साथ लेके चली जाती हूँ ताकि जानवरों के चराने में आराम रहे, मुझे परेशानी ना हो। कि ये सब अलम यजिद का यतीमन फआवा हूं, कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप जब यतीम थे तब उस वक्त पर हमने आपका हाथ नहीं छोड़ा, तो आप कहां से छोड़ दें। वापस तशरीफ लाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा जी, चंद दिनों में वालिदा का इंतकाल हो गया, 2 साल गुजरे तो दादा जान का इंतकाल हो गया, 7 साल 8-9 साल की उम्र में चचा की सरपरस्ती में थे, चचा की परवरिश में थे, चचा जब सफर में निकलते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसरार करने लगे कि अल्लाह के रसूल मुझे जी, अल्लाह के रसूल ने चचा से कहा कि चचा जान आप सफर में जा रहे हैं, मैं अकेला यहां रह के क्या करूं, आप भी मुझे साथ ले लें। बड़ी मुश्किल से चचा रसूलुल्लाह को साथ लेके चले। रास्ते में कई वाकियात ऐसे पेश आए जिससे अंदाजा होता है कि अल्लाह के रसूल के साथ में खास रहमत। ये जो काफिला था, काफिला एक मकाम पर पहुंचा, वहां पहुंचकर काफिले ने पड़ाव डाला, सामान एक जगह पर रखा, वो पूरे का पूरा सहरा रेगिस्तान, रेगिस्तानों में दरख्त नहीं होते हैं, तो इक्का दुक्का जो दरख्त था उस दरख्त के नीचे सारे लोग बैठ गए और अपना सामान रख के सब साये के नीचे, सख्त धूप है, हल्का सा साया है, तो काफिले के सब लोग साये में बैठ गए। अल्लाह के रसूल और चचा देर से पहुंचे, अपने जानवर को बांधा और बांध कर आके देखा तो जितना साया है, साये में सब लोग बैठ गए हैं, उधर जी दरख्त के उस तरफ साया नहीं है, धूप और गर्मी पड़ रही है और साये में बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। तो चचा और भतीजे दोनों ने कहा कि चलो उधर ही धूप में बैठ जाते हैं। पूरा मजमा देख रहा है कि अल्लाह के रसूल और चचा जान हजरत ख्वाजा अबू तालिब दोनों जाके धूप में बैठे। किताबों में सीरत की लिखा है कि जैसे ही धूप में बैठे साया बदल गया, इधर जो साया था वो साया उधर रसूलुल्लाह की तरफ को हो गया, कि इधर साये में बैठे हुए सब धूप में आ गए और उधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चचा गोया साये में अल्लाह ताला ने आपको बिठाया। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इब्तिदा से, बुनियादी से जी, बचपन से अल्लाह ताला की खास रहमतें थी। उन्हीं रहमतों की तरफ अल्लाह जल्ल शानहु ने इन आयात में इशारा किया कि अलम यजिद का यतीमन फआवा, कि हमने आपको यतीम पाया तो आपको सहारा दिया। वह वजद का दौलन फहदा, और आपको हमने, एक तर्जुमा उलमा ने इसका यह किया कि आपको हमने बे इल्म पाया, कि आपके पास इल्म नहीं था। मा कुंत तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन जालनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना। कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पर अल्लाह ने यह बात बताई है कि आप उम्मी थे, आपने किसी से पढ़ना लिखना सीखा नहीं था, इसलिए किताब क्या होती है, वला तखुत्तुहु बियमीनिक, रसूलुल्लाह आप लिख नहीं सकते थे, आप पढ़ नहीं सकते थे, आप जी उम्मी थे लेकिन आपके पास रास्ता नहीं था, हमने आपको रास्ता दिया। वजदका दाल्लन फहदा, आपके पास रास्ता नहीं था, हमने आपको रास्ता दिया। एक तर्जुमा ये है जो आम तौर से तर्जुमे में किया जाता है, कुरान पाक का तर्जुमा आम तौर से इसी तरह किया जाता है कि आपको हमने गुम कर दे राह, यानी आपके पास रास्ता नहीं था, हमने आपको रास्ता दिखाया। लेकिन एक और बड़ा अजीब तर्जुमा हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने किया है। इस तर्जुमे को जरा समझना पड़ेगा कि अरब जो रेगिस्तान है, सहरा रेगिस्तान, रेगिस्तान में सिर्फ चारों तरफ रेत ही रेत होती है, और रेगिस्तान में सफर करने वाले के लिए जी निशाने मंजिल, रास्ते का कोई निशान मुतय्यन करना मुमकिन नहीं है, कोई रास्ते का निशान होता ही नहीं है। कोई टेला देखा, उस टेले को देखकर तय कर लिया कि रास्ते में चलते वक्त पर एक दाहिनी तरफ मट्टी का बड़ा टेला होता है, ये अगर निशानी के तौर पर बयान किया जाए तो वो टेला दाहिनी तरफ रहे जरूरी नहीं, हवा चले तो वो टेला मट्टी का पूरे का पूरा रेत का टेला वो पूरे का पूरा उड़कर दाएं के बजाय बाएं आके खड़ जाता है। इसलिए पूरे सहरा में कोई मंजिल का रास्ते की रास्ते का कोई निशान नहीं मिलता है। इक्का दुक्का बहुत इत्तिफाक से पूरे सहरा में बहुत कम एक आध दरख्त रहता है। वो दरख्त बहुत बड़ी नेमत होती है उन लोगों के लिए जो रेगिस्तान में सफर करते हैं, इसलिए कि दरख्त जो है वो एक बहुत बड़ा निशान कि इतनी दूर तक चल कर जाओ तो मैलों के बाद एक दरख्त तुम्हें मिलेगा और वो दरख्त फलां जगह पर होगा, उससे ऐसे जाना, एक बहुत बड़ा निशान होता है और रेगिस्तान में सफर करने वालों के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रेगिस्तान में सहरा में जो इक्का दुक्का दरख्त रहता है उस दरख्त को अरबी में कहते हैं जालन जी, उस दरख्त को कहते हैं जालन के वो जी रास्ता गुम करने वाले। रेगिस्तान में लोग गुम कर रास्ता गुम जाते हैं, उनको पता नहीं चलता, वो भटक जाते हैं। तो भटक जाने वालों के लिए कोई निशान अगर है तो इत्तिफाक से वो इक्का दुक्का जो दरख्त होता है वो दरख्त उनके लिए सफर का निशान बनता है। तो इसलिए उस दरख्त को कहा जाता है जालन के, भटके हुए के लिए निशानी, भटके हुए के लिए अलामत और निशानी। तो इमाम राजी रहमतुल्लाही अलैह ने तर्जुमा फरमाया कि वो जो दूसरे मुफस्सिरीन और दूसरे मुतर्जिमीन करते हैं कि हमने आपको गुम कर दे राह पाया फिर हमने रास्ता दिखाया, ऐसा नहीं है तर्जुमा, बल्कि हजरत इमाम राजी फरमाते हैं रेगिस्तान के इक्का दुक्का दरख्त की तरह से हमने आपको पाया और आपके जरिए से हमने रास्ता दिखाया है। बड़ा अजीब तर्जुमा है कि रेगिस्तान का एक दरख्त जो पूरे रेगिस्तान में सैकड़ों मैलों में होता है उसकी तरह से हमने आपको पाया है और उस दरख्त की तरह हमने आपको रास्ता दिखाया है। ये इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा है कि हुजूर से मोहब्बत के लिए अल्लाह जल्ले शानहू ये नहीं फरमा रहे कि आपके पास इल्म नहीं था बल्कि और आपके पास रास्ता नहीं था, आपके पास हिदायत नहीं थी, ये तर्जुमा नहीं बल्कि उससे उम्दा और बेहतर तर्जुमा कि आप पहले ही से रहबर थे, आप बुनियाद और इब्तिदा से और आप जी जिंदगी के आगाज से बल्कि दुनिया के आगाज से आपको अल्लाह ताला ने रहबर बनाया था और उसी रहबरी से दूसरों को पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया हम। और आगे अल्लाह ने फरमाया वजदका आइलन फअगना, रसूलुल्लाह का कुंबा जरा बड़ा था फिर आपने ख्वाजा अबू तालिब के इंतकाल के बाद ख्वाजा अबू तालिब के कुंबे के कुछ लोगों की भी आपने सरपरस्ती कर ली, उनको भी आपने जो है उनके सर पर भी अपना शफकत का हाथ रख दिया तो आपका कुंबा जरा बड़ा। माशाल्लाह चार बेटियां थी और रिवायत के अतबार से पता चलता है कि तीन बेटे आपके हुए तो गोया सात का आपका अपना कुंबा था। और फिर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा अबू तालिब के बेटे हजरत अली को अपने परवरिश में ले लिया था, इस तरह से बड़ा कुंबा था। लेकिन आपकी कोई तिजारत या आपका कोई मुस्तकिल आमदनी का अल्लाह ने कोई जरिया नहीं बनाया था। तो अल्लाह जल्ले शानो फरमाते हैं कि आपको हमने मोहताज नहीं रखा, कुंबा बड़ा होने के बावजूद हमने आपको मोहताज नहीं रखा, आपको हमने बेनियाज बनाया। और खुद हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला ना फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह की कैफियत क्या थी जब आप अलैहिस्सलाम गारे हिरा से पहली वही लेकर आए और घर में दाखिल होकर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए सहमे हुए आपने जम्मीलूनी जम्मीलूनी फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो, और आपको कंबल उड़ा के लिटाया गया। थोड़ी देर के बाद आप संभले तो संभलने के बाद हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लकद खशीतु अला नफसी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे मेरी जान के जाने का डर हो गया कि जिब्राइल ने अपने सीने से लगाकर मुझे तीन दफा बहुत जोर से दबाया है और इतना जोर से दबाया कि हदीस की किताबों में आता है लकद बलग मिन्निल जुहद के जिब्राइल की ताकत पूरी इंतहा को पहुंच गई। जिब्राइल ने इतने जोर से दबाया कि मेरी ताकत नहीं, हजरत रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जिब्राइल की ताकत अपनी इंतहा को पहुंच गई। जिब्राइल जितनी ताकत लगाकर दबा सकते थे वो पूरी ताकत लगाकर जिब्राइल ने मुझे 3 दफा दबाया और फिर मुझे छोड़ के कहा था कि इकरा पढ़िए। तो मैंने पढ़ा, एक तो जिब्राइल का दबाना, दूसरा आसमान के उस कलाम कुरान पाक का वो वजन जो पहली दफा अल्लाह के रसूल पर उतरा है, तो वो वजन, ये दोनों चीजें ऐसी अल्लाह के रसूल पर असर अंदाज हुई कि रसूलुल्लाह घबराए, सहमे और आपने अपनी बीवी से कहा लखत खशी तो आला नफसी, मुझे मेरी जान के जाने का डर हो गया हूं। तो हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था वल्लाही ला युखजीक अल्लाह अबदा, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा, आपको शर्मिंदा नहीं करेगा, आपको पशेमान होना नहीं पड़ेगा, आपको लोगों के सामने ये अपना सर छुपाना, चेहरा छुपाना नहीं पड़ेगा, अल्लाह आपको नवाजेंगे, आपको सुरखुरू फरमाएंगे। क्यों? हजरत खदीजा ने फरमाया इन्नकल तसीलुर रहीम, आप रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी करते हैं, व तहमिलुल कल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमा कि लोगों का बोझ उठा लेते हैं जी, ये दूसरों का बोझ उठा ले, खुद अपना कुंबा बड़ा है लेकिन बाजू कोई यतीम हो गया, कोई मजबूर हो गया, तो उनका खर्च भी रसूलुल्लाह अपने सर ले लेते थे, तहमिलुल कल कि उनकी जिम्मेदारी भी ले लेते, व तकसीबुल मादूम, हम जाना खदीजा फरमाती है कि तकसीबुल मादूम, आप मेहनत करके कमाते थे और मेहनत करके कमाकर अपनी जात अपने बच्चों पर कम खर्च करते थे, मोहल्ले के बस्ती के इलाके के ऐसे माजूर मजबूर लोगों को, मोहताज और मुजदर लोगों को तलाश करके उनको पहुंचा देते थे कि अगर उनको वक्त पर रोटी नहीं मिलेगी तो फिर उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो तुईन अला नवाइबिल हक, आसमानी आफतें अगर किसी को परेशान कर दें, जलजला तूफान सैलाब या कोई भी आसमानी आफत जी, कोई किसी पर कोई हमला, किसी की जान चली जाए, कोई भी आसमानी आफत आए तो सबसे पहले आप सामने खड़े रहते थे और आप कहते थे कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर है, कि इस तरह अपने खानदान और कुंबे का खर्च, फिर सारे इलाके के मजबूर मोहताजों का खर्च, फिर उसके ऊपर मेजबानी मेहमान नवाजी जी, मुसीबत जदों की मदद जी, बेआसराओं के लिए आसरा बनना, बेसहारों के लिए सहारा बनना, इतना सारा खर्च था और ये सारा का सारा खर्च अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त किया और वो सब आपने किया, उसी को अल्लाह ताला फरमाते हैं वजदका आइलन फअगना, हमने आपको कुंबे वाला पाया, जिम्मेदारियों वाला पाया और हमने आपको मोहताज नहीं बनाया है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पेश आई, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पेश आई, अल्लाह ने आपको दिया बल्कि आपके जरिए से दिया। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ने खूब नवाजा था, हजरत खदीजा ने रसूलुल्लाह पर अपना माल लुटाया है, पैगंबरी के मिलने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना माल लुटाया है, पैगंबरी के मिलने से लेकर मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत खदीजा के इंतकाल तक हजरत खदीजा ने अपनी पूरी दौलत रसूलुल्लाह पर लुटाई है। हजरत खदीजा कोई मामूली खातून नहीं थी, वो मक्के की सबसे बड़ी ताजिरा थी, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का, कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार था और वो बड़ा कारोबार खुद संभालती थी और दूसरों को रखकर वह सारे का सारा कारोबार चलाती थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी से हजरत खदीजा के कारोबार को संभाला था, निकाह से पहले से, फिर निकाह के बाद भी संभाला और आपने उसको पूरे तौर से उस कारोबार को गोया तरक्की दी, फरोग दिया। लेकिन हजरत खदीजा ने जब पैगंबरी मिली 40 साल के बाद, तो 40 साल की पैगंबरी के बाद अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत खदीजा ने अपना माल लुटाना शुरू किया कि रसूलुल्लाह की तमाम वो दावती मशीन, आपकी तहरीक और आपका जितना काम था उसमें रसूलुल्लाह लोगों को दावतें देते, बुलाते, खिलाते, दीन की बात करते, ईमान की दावत देते, इस्लाम का पैगाम उनके सामने रखते। गोया रोजाना एक लंबा सिलसिला था खिलाने पिलाने, लोगों पर खर्च करने, लोगों को सहारा बनने का। हजरत खदीजा का माल उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत खदीजा ने पेश किया। आप अंदाजा करें, हजरत खदीजा जो कपड़े की बड़ी ताजिरा थी, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार करती थी, एक व्यापारी अगर धंधा और कारोबार छोड़ दे तो भी एक लंबे जमाने तक उसके पास व्यापार का माल घर में पड़ा रहता है, किसी न किसी कोने में कुछ न कुछ बचा रहता है। लेकिन हजरत खदीजा ने इस तरह से रसूलुल्लाह पर लुटाया कि एक वक्त आया हजरत खदीजा के बदन पर जो कपड़े थे उन कपड़ों में पैवंद लगा हुआ था। इसी को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वह वजदका आइलन फागना, कि हमने आपको कुंबे वाला पाया और आपकी बीवी के जरिए से हमने आपको बेनयाज बना दिया, मोहताज नहीं रखा, अल्लाह ने आपको खूब नवाज दिया और आपकी तमाम जरूरतें हाजतों को अल्लाह ताला ने पूरा करा दी हैं। फिर आगे हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हिदायतें हैं। ये तीन चीजें सुनाकर, आपको यतीम पाया, आपके सर पर हाथ रखा, आपको कुंबे वाला पाया, आपको बेनयाज किया, और आपको हमने जी इल्म नहीं था, हमने आपको इल्म दिया, या आपको हमने पूरे सहरा और रेगिस्तान के इक्के अकेले तने तनहा दरख्त की तरह से पाकर आपके जरिए से पूरी इंसानियत को रास्ता दिखाया है। ये बात बताकर आगे अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, अम्मल यतीम फला तकहर व अम्मस साइला फला तनहर। नबी जी, यतीमी की जिंदगी आपने खुद देखी है, इसलिए कोई यतीम आपके पास आए तो आप उसको अपने से दूर मत कीजिए, और आपने जरूरत को महसूस किया है, घरों में किसी के बच्चे होते हैं और खास तौर से बेटियां होती हैं तो घर की जरूरतें होती हैं, घर में हाजतें होती हैं, ऐसे कोई आपके सामने मांगने के लिए जो आए और जो हाथ फैलाकर आपके सामने आए, वो अपने घर की किस जरूरत की बिना पर पता नहीं आपके पास आया है। इसलिए किसी साइल, किसी मांगने वाले को आप खाली हाथ धुतकार के मत भेजिए। ये दोनों चीजें ताकीद फरमाई हैं, और ये सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल के वास्ते से गोया हमें और हमें बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है कि यतीम के सर पर हाथ रखो, जरूरतमंद और मोहताज अगर हमारे पास आए तो उसको मांगने वाले को अता करो, मांगने वाले को नवाजो। रसूलुल्लाह की हदीस में आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का खुलासा है, मांगने वाला अगर घोड़े पर बैठ के मांगे तो भी उसे खाली हाथ मत देना, खाली हाथ मत भेजना जी। कि आमतौर से हमारे पास दस्तूर है कि मांगने वाला हट्टा कट्टा दिखता है, तंदुरुस्त नजर आता है तो लोग उसको धुतकार देते हैं, लोग उसको कड़वी कसेली सुनाते हैं, पता नहीं उसको, वो तो पैसे मांग रहा है, उसको नसीहतों का अंबार देके भेजते हैं। इतने सेहतमंद हो, इतने तंदुरुस्त हो, मेहनत क्यों नहीं करते, कमा क्यों नहीं सकते, क्यों नहीं ये जी सवाल करने वाला जब किसी के सामने आकर खड़े होकर मांग रहा है तो पता नहीं किस मोहताजगी की बिना पर मांग रहा है। तजुर्बा हर इंसान को है कि सिर्फ सेहत की वजह से कमाई नहीं हो जाती है, तंदुरुस्ती है इसलिए पैसा हाथ में नहीं आ जाता है और मजदूरी नहीं मिल जाती है। क्या पता उसने मजदूरी की कोशिश की होगी, और हो सकता है वो भी किसी जमाने में अपने पास माल और दौलत के अंबार रखता होगा। आसमानी आफतें अचानक लोगों को ऊपर से नीचे पटक देती हैं, तो वो मजबूर हो गया होगा, जरूरतमंद बन गया है। तो हर एक को सिर्फ नसीहत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का खुलासा है कि मांगने वाला घोड़े पर बैठा हो तो भी उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए।
रसूल का राज क्या है?
ये सारे राज रसूलुल्लाह के पास है, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में शाहिद का लफ्ज दिया गया, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शाहिद हैं। जी शाहिद का माना एक मतलब ये भी है कि राजदार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ने सारे राज रखवाए। कौन से राज? दुनिया में कामयाबी के राज, आखिरत में सरफराजी के राज, और दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में तरक्की के राज, वो सब के सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखे हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल से अल्लाह तआला ने फरमा, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ये जो आपके पास दौलत है इस दौलत को आप लोगों में बांटिए, लोगों को बताइए कि तरक्की कैसे मिलती है, आदमी कामयाब कैसे होता है, सुरखरू कैसे होता है, जिंदगी भली कैसे बनती है और अच्छी कैसे बनती है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया है, बताया है, आपने समझाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसल गिना कसरतुल अर्ज, लोग समझते हैं सामान ज्यादा हो गया तो तवंगर बन गया, चीजें बढ़ गईं तो माशाल्लाह मालदार बन गया, सरमायादार बन गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सामान के ज्यादा होने, चीजों के बढ़ जाने और जरूरत के सामान के फैल जाने से आदमी तवंगर नहीं बनता है, तवंगरी दिल से आती है। कि अल्लाह जल्ल शानहू जी दिल में अगर तवंगरी डाले, बेनयाजी, मोहताजगी दिल के अंदर से जब खत्म होती है तो तब आदमी गनी बनता है, मोहताज बनता है, वरना छोटे से बड़ा फकीर बनता है। कि मामूली जिसके पास सामान कम है वो छोटा फकीर रहता है, और जिसके पास सामान ज्यादा है वो बड़ा फकीर बन जाता है। मैंने बारहा आपको सुनाया है हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मालदार सरमायादार साहेब आए और उन्होंने हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को जी 500 दिरहम दिए। 500 दिरहम आज के जमाने के 1,00,000 रुपए हैं, 1,00,000 रुपए हैं जी। किसी को देने की हिम्मत नहीं होती है, दीन की खिदमत करने वालों को आज कौन 1,00,000 रुपए दे देता है जी। तो बहरहाल मुझे ये अर्ज करना है कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने उस जमाने के 500 दिरहम आज के जमाने के 1,00,000 रुपए उन्होंने हदीये में पेश किए। हजरत ने कबूल फरमाए, कबूल फरमा कर हजरत इमाम हसन बसरी ने उनसे पूछा, आपकी आपके दिल में यह अरमान है कि आपका पैसा बढ़े? आपके दिल में यह ख्वाहिश है, यह अरमान है कि आपका पैसा बढ़े? तो उन्होंने कहा, हजरत यह अरमान तो है, इसीलिए आपको दे रहा हूं कि आप दुआ दे दें, बरकत की दुआ दे दें कि अल्लाह मेरा पैसा और बढ़ा दे, मेरी दौलत और बढ़ा दे। तो हजरत इमाम हसन बसरी ने वो 500 उनके हाथ में देके कहा, हमारे दिल में यह अरमान नहीं है कि हमारा पैसा बढ़े, इसलिए इस 500 के मेरे से ज्यादा आप जरूरतमंद हैं, आप रखें इसको, मुझे जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं कि दिल का गीना, बेनयाजी, आदमी के दिल के अंदर बेनयाजी बढ़े। सामान के बढ़ने से आदमी तवंगर नहीं बन जाता है। कितनी अजीब राज की बात है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि आदमी को माल और सामान के एतबार से अपने आप को मालदार और सरमायादार नहीं, बल्कि दिल के एतबार से अपने आप को सरमायादार बनाना है, दिल के एतबार से अपने आप को गनी बनाना है। ये वो राज हैं जो अल्लाह के रसूल ने पूरी उम्मत को दिए, इंसानों को दिए। यहां तक कि जब आखिरी वक्त आया हज्जतुल वदा में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमात को खड़ा करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था, अला हल बल्लगतु, जी 23 साल का अरसा गुजर रहा है मुझे नबुवत को मिले हुए, क्या मैंने अल्लाह की तरफ से दी हुई सारी बातें तुम्हारे तक पहुंचा दी हैं? तो सहाबा ने कहा, बल्लगता व नसहता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने सिर्फ पहुंचाया नहीं, आपने खैर खाही की है, आपने हमारी हमदर्दी की है, और आपने हमारे साथ में हमारा भला चाहकर हम तक आपने ये सब पहुंचाया। ये दीन जो रसूलुल्लाह ने दिया, जिंदगी के गुजारने के तरीके, खाना खाने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, रास्ता चलने का तरीका, यहां तक कि जरूरत से फारिग होने का तरीका। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला को एक यहूदी ने रास्ते में खड़ा कर लिया और खड़ा करके कहा, अजीब है तुम्हारे नबी, तुम्हारे पैगंबर मस्जिद में बैठ के पेशाब पाखाने का तरीका सिखाते हैं। तंज किया, जी आपके ऊपर ताना किया, कहा ये भी कोई चीज है मस्जिद में बैठकर सिखाने की। तो हजरत सलमान फारसी घबराए नहीं, हजरत सलमान फारसी ने कहा कि पेशाब पाखाने का तरीका भी इंसान अपनी अकल से नहीं समझ सकता है, पैगंबर के बताने से मालूम पड़ता है कि पैगंबर ने बताया। काबतुल्लाह की अजमत सबके पास थी लेकिन पैगंबर ने बताया कि ला तस्तकबिलूहा वला तस्तदबिरूहा, कि जब जरूरत से फारिग होने के लिए बैठो तो काबतुल्लाह की तरफ चेहरा भी मत करना, काबतुल्लाह की तरफ पीठ भी मत करना, ये चेहरा भी ना करना पीठ भी ना करना, ये काबतुल्लाह का एक अदब है, इंसान अपनी अकल से नहीं समझ सका। रसूलुल्लाह ने बताया है दाहना और बायां, ये दायां और बायां दो हाथ अल्लाह ने दिए हैं, दाएं का हक अलग है बाएं का हक अलग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दाएं हाथ से इस्तिंजा मत करना, अपनी गंदगी को साफ मत करना, जरूरत से फारिग होने के लिए बैठो तो अपनी शर्मगाह को दाएं हाथ से मत पकड़ना। ये सारी बातें रसूलुल्लाह ने ताकीद करके बताई कि दायां अल्लाह ने अजमत वाला बनाया है, इसको खाने में इस्तेमाल करो, भली चीजों में इस्तेमाल करो, अच्छी चीजों में इसे लगाओ, और बाएं को गंदगी में दूसरी चीजों में इस्तेमाल करो। ये रसूलुल्लाह ने बताया है कि इस्तिंजा का तरीका भी इंसान अपने दिमाग से नहीं समझ सकता है, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। खाने का तरीका ये सामने से खाओ जी, बिस्मिल्लाह बोल कर खाओ और दाहने हाथ से खाओ, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। एक आदमी बैठा हुआ था सामने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दाएं से खाओ, उसका दायां हाथ अच्छा था जी, लेकिन वो दाएं हाथ से गुरूर की वजह से नहीं खाना चाहता था, वो बाएं हाथ से खा रहा था। तो उसने कहा मैं दाहने हाथ से नहीं खा सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं खा सकोगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं खा सकोगे। तो अल्लाह के रसूल का यह फरमाना कि उसके दाहने हाथ से जी वो ताकत खत्म हो गई जो उसके बदन में अल्लाह ने रखी थी, कि दाहना हाथ बायां हाथ इस्तेमाल करने का तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हैं जी, खाना लगा है, एक बच्चा बैठा हुआ है आपके साथ में खाना खा रहा है, पूरे बर्तन में उसका हाथ घूम रहा है, एक निवाला यहां से लिया, एक नवाला वहां से लिया, एक निवाला वहां से लिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेटे कुल मिम्मा यलीक, सामने से खाओ। उसने सामने से खाना शुरू किया, बर्तन खाने का रोटी या गोश्त का कुछ रहा होगा, वो बर्तन बदला। उसके बाद जी फिर खजूर लाके रखे गए, शायद खजूर लाके रखे गए, तो चार पांच किस्म के खजूर थे, वो बच्चा वैसे ही बैठा हुआ था, उसके सामने एक किस्म का खजूर था तो वही सामने के खजूर उठा के खा रहा था, बर्तन में और भी किस्म के खजूर थे, उसका जी ललचा रहा था कि वो भी उठा के खाऊं, लेकिन हुजूर ने ताकीद कर दी थी कुल मिम्मा यलीक, सामने से खाओ, तो वो फिर सामने वाला ही उठाता था, नजर उसकी पूरे बर्तन पर थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस फरमाया और रसूलुल्लाह ने फरमाया बेटे बर्तन में एक चीज हो तो सामने से खाओ, और अगर बर्तन में चार पांच किस्म की चीजें हैं तो जो तुम्हें पसंद हो उठा के खाओ। ये रसूलुल्लाह ने सिखाया है, खाने का तरीका सिखाया, पानी पीने का तरीका सिखाया। यह है वह अम्मा बि नियमत रब्बी का फहद्दिस, कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया जो नेमत अल्लाह ने आपको दी है उस नेमत को पूरी दुनिया में फैला दीजिए। इसी वजह से उलमा फरमाते हम रसूलुल्लाह के इरशाद को हदीस कहते हैं। हदीस का नाम हदीस कहां से पड़ा, तो उलमा फरमाते हैं कुरान की आयत से जी लिया गया है कि अल्लाह के रसूल से अल्लाह ने फरमाया वा अम्मा बि नियमत रब्बी का फहद्दिस, ये हदीस से हदीस का लफ्ज मिलता है कि आप हदीस बयान कीजिए, आपकी बात को यहां से हदीस का नाम दिया गया। इसलिए बुजुर्गो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को अल्लाह ने बयान किया है, आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, और ये सारे तज़किरे इसीलिए हैं कि इन तज़किरों से हमारे दिलों में भी रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा हो। सूरह वज़्ज़ुहा के बाद सूरह अलम नशरा, सूरह वज़्ज़ुहा ही का हिस्सा है, उसी का तकमीला है, उसी का आधा टुकड़ा है जो अल्लाह ने दूसरी सूरत में बयान किया है। इंशाअल्लाह अगली दफा मौका हो तो आपके सामने अर्ज करेंगे। अल्लाह से दुआ फरमाए अल्लाह जल्ला शन्हु हमें रसूलुल्लाह की मोहब्बतों से मालामाल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।